नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में तलाशी अभियान पांचवें दिन भी जारी। सेना मलबे में गहरे नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू करेगी। बांग्लादेश में आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमरीका ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। अन्य भारतीय एथलीट तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ स्पर्धाओं में भाग लेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
आज भारत एक फूड सरप्लस देश है, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक से पैसे पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज हैं और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 9 लाख हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई गई है। खेती के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां ड्रोन दीदियों को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि इन उपायों से केवल देश के किसानों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है कि जो भी कदम है इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य व्यवस्था में बदलाव। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। उन्होंने भूखमरी और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बढ़ते तापमान के कारण उत्पादन में कमी जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की है। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं, जो त्वरित और किफायती होती है। समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। समारोह में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी लोक अदालत की पैनल संरचना के बारे में बताया।
When we constituted the panels for the Lok Adalat, we ensured that every panel would consist of two judges and two members of the bar. One senior advocate drawn from SCBA and one advocate drawn from SCORA. The purpose behind doing this was to give ownership to the advocates over the institution.
ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newzoneair पर भी उपलब्ध हैं। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद सेना लगातार मानवीय सहायता तथा राहत और बचाव कार्य में लगी है। 1300 बचाव कर्मियों ने भारी मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आज पांचवें दिन तलाशी अभियान शुरू किया। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के लोग आपदा प्रभावित क्षेत्र में शवों की तलाश कर रहे हैं। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद सेना ने कहा है कि वो मलबे के बीच गहराई तक खोज अभियान चलाने के लिए वायुमार्ग द्वारा दिल्ली से आज ऑपरेटर्स के साथ जेवर रडार और चार रिको रडार मंगाएगी। उन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से शव तलाशने और जरूरी सेवाओं को बहाल करने का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। अब तक करीब 7000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तथा पुलिस विभाग हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में लगे हैं। अभी करीब 1000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वर्चुअली बात की और राहत तथा बचाव कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने जिले के मुनकटिया और सोनप्रयाग के बीच 300 लोगों को पहाड़ी रास्ता पार करने में मदद की। चीड़वासा में हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को निकाला जा रहा है। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में जल भराव की खबरें मिली हैं, जिसका यातायात पर असर पड़ा है। हालांकि उपनगरीय रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सातारा जिले में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के उपनगरों और ठाणे जिले में आज तेज बारिश की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना और नदिया जिलों में कुछ क्षेत्रों में बृहस्पतिवार शाम से हो रही लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दक्षिणी 24 परगना जिलों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त है। कल रात से 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर होंगी। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि ये फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत के राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। आकाशवाणी संगीत समारोह आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में शुरू हो रहा है। दो दिन के समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में शाम 5:30 बजे से होगा। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीर्थ मेवुंदी और पंडित विश्वमोहन भट्ट सहित देश के जाने माने संगीतज्ञ आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज 14वां भारतीय अंगदान दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने आज नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने ब्रेन डेड घोषित होने के बाद अपने परिवारों के सदस्यों के अंग दान कर दिए। अंग प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा राज्यों तथा चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने और 9 सूत्रीय मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। वे आज देश में धरना भी कर रहे हैं। भेदभाव रोधी विद्यार्थी आंदोलन के 2 समन्वयकों ने कल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कार्यक्रमों की घोषणा की। लगभग 2 सप्ताह बाद बांग्लादेश में कल विभिन्न स्थानों पर हिंसा दोबारा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस बीच पत्रकारों ने पिछले महीने कोटा आंदोलन को कवर कर रहे 2 पत्रकारों की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर ने ढाका में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुरक्षा कर्मियों को विद्यार्थियों को परेशान न करने और हिरासत में न रखने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। ये बदलाव इसराइल द्वारा हाल ही में हमास और हिजबुल्ला के नेताओं पर किए गए हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को लेकर हुआ है। इन हमलों के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिल रही थीं। अमरीका के रक्षा विभाग ने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूरोपीय और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल और रक्षा सक्षम क्रूजर तैनात करने के आदेश दिए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि वो 1 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को पश्चिम एशिया में ले जाएंगे। अमेरिका के 2 नौसेना विध्वंसक जहाज जो वर्तमान में मध्य पूर्व में हैं, वो लाल सागर के उत्तर में भूमध्य सागर की ओर बढ़ेंगे। बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये और मंगलवार को बेरूत में वज्द हिजबुल्ला कमांडर फौद शुक्र की हत्या से लड़ाई के पूरी तरह से क्षेत्रीय युद्ध में बदलने का खतरा है। साथ ही ईरान ने भी अपने क्षेत्र पर हमले के बाद जवाब देने की धमकी दी है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की है। 79वें सेना दिवस के अवसर पर लेबनानी सेना मुख्यालय की यात्रा के दौरान श्री मिकाती ने इस क्षेत्र की चिंताजनक घटनाओं का जिक्र किया, जिससे खतरे बढ़ने और इसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्तार होने का पता चलता है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज भारतीय निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मात्र 3 अंक से कांस्य पदक से चूक गई। उन्हें फाइनल मुकाबले में 4थे स्थान से संतोष करना पड़ा। मनु पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ के मैदान में उतरेंगे। मुक्केबाजी में देर रात निशांत देव 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के मार्को ओलांजो वर्डे अल्वारेस का सामना करेंगे। इस मैच को जीतकर निशांत भारत के लिए एक और पदक पक्का कर सकते हैं। गोल्फ में शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर 3रे दौर में खेलेंगे। नौकायन में डिंगी स्पर्धा में नेत्रा कुमानन दोपहर 3:35 पर, विष्णु सरवनन दोपहर 3:50 पर अपने मुकाबले खेलेंगे।
तीरंदाजी में महिला वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल क्रॉपेन को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भजन कौर का मुकाबला इंडोनेशिया के डायनंदा चोइरुनिसा के साथ चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी। सेना मलबे में गहरे नीचे दबे लोगों की तलाशी शुरू करेगी। बांग्लादेश में आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में 4थे स्थान पर रहीं। अन्य भारतीय एथलीट तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।